हरे कृष्णा। आज 15 जून मंगलवार संध्या जागृति का कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। आपने कीर्तन किया और बारिश चालू हो गई। आप सबको पता होना चाहिए, थोड़ा इसको बाजू में, आप थोड़ा इधर आके बैठ जाओ, सामने प्लीज़ कम, पीछे आइए। हरे कृष्णा। जापान में एक बार इस्कॉन के भक्त लोग गए और उस समय वहाँ पर अकाल पड़े हुई थी, परेशानी हो रही थी और भक्त लोग कह रहे थे कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो वर्षा आएगी। तो सब जगह पर उनको चैलेंज किया गया। तो भक्त लोगों ने जब रस्तों पर कीर्तन किया तो उस समय बरसात हुई थी वहाँ पर, सब पेपर में हेडलाइंस आया नेक्स्ट डे, हरे कृष्णा सिंगिंग कीर्तन ऑन द रोड, रेन्स फॉलिंग आफ्टर दैट। हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि आज भी अगर विश्व में वर्षा हो रही है, अगर आकाश के बादलों में पानी है, अगर जमीन से कोई ध्यान नहीं उग रहा है, अगर पेड़ों पर फल और फूल निकल रहे हैं, हाँ, और आज भी अगर जीवन में कुछ अच्छाई है लोगों के अंदर, तो उसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं भगवान के भक्त जो हैं वो बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं। और जब तक ये चलेगा तब तक वर्षा चलती रहेगी, कम कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पाप बढ़ रहे हैं और धार्मिकता कम होती जा रही है कलयुग के प्रभाव से, इसलिए हर साल गर्मी बढ़ रही है, बरसात कम होती जा रही है। तो हमको समझना चाहिए कि जितना हम भगवान को पुकारेंगे उतना हमारे लिए शांतिमय जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो प्राप्त होते रहेगा। ऐसा नहीं कि हम भगवान के नाम का जप करते केवल इसलिए कि वर्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं, वो उसके अनेक अनंत लाभों का अंदर एक लाभ है, बाय प्रोडक्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ, मेन पर्पस नहीं है उसका, वो मेन पर्पस तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए है, हाँ, इसको बाद में बोलते हैं, भगवान के साथ जुड़ने के लिए है, भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। हमें धन मिले, हमें प्रमोशन मिले, हम सुंदर बने, हम रोग से मुक्त हो जाएं, ये उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोई श्रेष्ठ कार्य हम करते हैं तो उसके कई सारे ऐसे लाभ होते हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं। वैसे ही बारिश का आना ये भगवान के नाम के प्रामाणिक हृदय से जप करने का एक परिणाम है, इसलिए हम कहते हैं पुकारो। हमारे हृदय में अकाल पड़ा हुआ है, किस काम का, किस चीज़ का, भगवान को छोड़कर जब जो हम जी रहे हैं वो अकाल जैसा ही तो है, हाँ, तो भगवान को भूलकर हम जीवन जीते हैं तो वो इट्स लाइक अ ड्राउट, इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें केवल क्लेश है, चिंता है, परेशानी है, तकलीफ है, लोगों को रोग बीमारियाँ बढ़ रही है। तो जब भगवान को हृदय में बुलाते हैं उनके नाम के स्वरूप, तो वर्षा की तरह है जो हमारे हृदय के अकाल को नष्ट कर देता है और आत्मा को पुनः अपनी मूलभूत अवस्था में लाता है। इट ब्रिंग्स द सोल बैक इन द ओरिजिनल कंडीशन। और उसकी मूलभूत अवस्था क्या है? जीवेर, क्या कहते हैं उसको, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णेर दास। भगवान का हम दास हैं, भगवान के सेवक हैं, उनके अंश हैं। ये मूल अवस्था में हम जब आते हैं तो ये हृदय का अकाल नष्ट हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि हम आपको बोलते हैं पुकारो पुकारो, क्योंकि भगवान के नाम के कीर्तन में कोई दुखी रह नहीं सकता है। कोई था क्या दुखी? अभी जो लोग कीर्तन में झूम झूम कर नाच रहे थे उसमें से कोई उस समय दुखी था? नॉट पॉसिबल। आप इसका प्रयोग करके देखिए, अगर आपका बहुत दुख है, बहुत चिंता है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत परेशानी आपको है, बात करने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसे मौके पर आप जाके झूमते हुए कीर्तन में अगर लोग नाच रहे हैं उसमें आप जाके सहभागी हो जाइए, 2 मिनट के अंदर आपका सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। आपको भी लगेगा अरे मैं ही दुखी था क्या, ऐसा आपको लगेगा, इससे अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कितने भी दुखी हैं जीवन में, कितने भी परेशान हो, कितने भी चिंतित हो, एंग्जाइटी हो आपको, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो आपको, विफलता आ गई जीवन के बारे में, जीना ही नहीं है मेरे को, ऐसे भयंकर अवस्था में आप कीर्तन में भाग लीजिए और झूम झूम के हाथ उठा के नाचिए। जैसे हाथ आपका उठेगा सब चिंताएं चली जाएगी आसमान में। ये शक्ति है हरिनाम की, आप लोगों को उसका अनुभव करना चाहिए। केवल एक ही इसमें ज़रूरत है, हृदय से उसमें भाग लेना चाहिए, संकोच करके नहीं, नहीं 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 क्या बोलेंगे लोग, अरे नहीं मैं शर्माती है लोग क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बिना संकोच जो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, चिंता हरण हो जाता है उसका। जैसे कोई तालियां बजाता है तो पेड़ पर बैठे हुए पंछी उड़ते ना, वैसे ही हमारे शरीर रूपी पेड़ पर जितने काम वासना रूपी पक्षी बैठे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, शरीर का आनंद चाहिए, ये वस्तु चाहिए वो वस्तु चाहिए, पैसा चाहिए, सारे पक्षी बैठे हुए हैं। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन में ढोल बजता है, करताल बजते हैं, सब ये काम वासना रूपी पंछी जो है उड़ जाते हैं। और ये काम वासना रूपी पंछी बैठे हुए हैं इसलिए आपको चिंता है, जब ये उड़ जाते हैं साथ में चिंता को लेकर उड़ जाते हैं। इसलिए हमको भगवान के नाम का संकीर्तन यानी कि एकत्र आकर किया हुआ जो कीर्तन है पुकारना है, हाँ केवल बोलना नहीं है, पुकारना है उनको, नाम लेकर उनको पुकारना है, उनको आवाज़ देना है, संबोधन करना है उनको, ताकि उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़े, सब हम पर सब पड़े। ये भगवान के नाम का महिमा है। और वो भगवान जो अपने नाम के रूप में आते हैं कितने अद्भुत रूप में आते हैं, हम उनको भी अंग है, उनको भी शरीर है, उनको भी पर्सनैलिटी है, हाँ वो भी रहते हैं किसी जगह पर किसी लोक में, लेकिन अलग अलग रूप में आते हैं वो हमारे लिए। हाँ कोई बोले क्या है वही नाम है हमेशा का बोरिंग है, ऐसे नहीं है, नित्य नवायमान, रोज रोज उस नाम के अंदर जो है नया आनंद है। कई साल से भी वही मंत्र जप कर रहे हैं, आप बोले जरा मंत्र बदली करो अभी, वो बोर हो गया उसको भी, हाँ उसका क्या बोलते हैं ड्यू डेट खत्म हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया अभी उसका, नया मंत्र लेके आओ, ऐसा नहीं है इसके अंदर। 25 साल हो गए 50 साल हो गए वही मंत्र जप कर रहे हैं, उसी मंत्र को दोहरा रहे हैं, उसी मंत्र में नाच रहे हैं अलग अलग धुन में, क्योंकि भगवान नित्य नवयौवन है इसलिए उनका नाम भी उनके जैसा ही है, वो कभी भी उसको जप करके बोर नहीं होता है। अगर दिन ले लगाएंगे, दिल लगाएंगे नहीं तो बोर होगा जरूर, हृदय से पुकारेंगे तो कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि साक्षात भगवान का व्यक्तित्व उस नाम के अंदर उपस्थित है। उस नाम के अंदर जब वो उपस्थित हैं और जब हम उस नाम को लेते हैं पुकारते हैं तो उस नाम का जो दिव्य आनंद है भगवान से हमको प्राप्त होता है, इसलिए सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप इसको प्रयोग करके देखिए, जब भी आपको कष्ट होगा भगवान के नाम को पुकारिए, 2-4 भक्तों को बुलाकर कीर्तन कर सकते हैं तो करिए, और जब भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मौका आता है उस पर भाग लीजिए बिना संकोच के, कोई संकोच की कोई बात नहीं, हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, हम सब लोग सामान्य जीव है, सब लोग भगवान के अंश हैं। हाँ काले है गोरे है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई और कोई जाति का है, कोई चाइनीज है, कोई अमेरिकन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब भगवान के बालक हैं हम, और उनको पुकार रहे हैं, हमारे शरीर को जो हम हिला रहे हैं नृत्य के रूप में वो उनके लिए अर्पण है। हाँ किसी साथीदार को दिखाने के लिए नहीं है मैं कितना बढ़िया नाचता हूँ, किसी सहेली को दिखाने के लिए नहीं, वो कोई कर्मणों यानी मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन तो अपने आप हो जाता है लेकिन मनोरंजन के लिए वो करते नहीं हम लोग, उनको अर्पण करने के लिए करते हैं, हमारी भावना हमारे शरीर के माध्यम से हमारे शरीर के हालचाल से गतिविधि से उनके चरणों में हमारी भावना को अर्पण करने का प्रयास करते हैं। हरिनाम के यज्ञ में हमारे नृत्य के द्वारा हम आहुति अर्पण कर रहे हैं, ये उसका भावना है, इस भावना से हमको नाचना चाहिए और बिना भूले हुए गाथा में गाना भी चाहिए जब हम शरीर को हिला रहे हैं, तब जाकर हमारी भावना भगवान स्वीकार करेंगे, तब जाकर आपकी चिंताएं सब हट जाएंगी। तो वो भगवान जो नरसिंह रूप में आए, हाँ आधे सिंह आधे पुरुष के रूप में, कई ऐसे योनि ब्रह्मा ने नहीं बनाए थे कभी, ब्रह्मा जी ने जितनी योनि बनाई है 84 लक्ष योनि बनाई है, उसमें कोई ऐसा योनि नहीं है जिसमें आधा मनुष्य और आधा सिंह हो, एक ही व्यक्ति। हिरण्यकश्यप भी बहुत परेशान हो गए थे देखकर, ये कौन सा जीव है, मैंने तो ब्रह्मा से कहा था कि तुम्हारे द्वारा निर्मित जितने भी योनियां हैं उसके द्वारा मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए, ये उसके परे दिखता है। ऐसा अद्भुत काम केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की व्याख्या ही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु आपके मन में आएगी कि ये नहीं कर सकते हैं तो वो भगवान नहीं हो सकते, वो कुछ भी मतलब एनीथिंग एट एनी टाइम कर सकते हैं। वैसे अद्भुत रूप में आने वाले भगवान एक समय घोड़े का सर भी लेके प्रकट हुए थे सत्ययुग में, का नाम है हयग्रीव, हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब इसका कंठ, इसकी गर्दन जो है वो घोड़े की है, क्योंकि एक राक्षस था हयग्रीव नामक का, उस तपस्या किया था, इसकी कथा गर्ग पुराण में आती है, और उसने उसका सर घोड़े का था, तो उसने तपस्या किया था, वरदान मांगा था कि मेरे जैसा ही व्यक्ति मेरा वरदा मतलब मुझे मार सकता है, ऐसा वरदान मांगा था। तो उसको पता था कि ब्रह्मा जी के योनि में कहीं भी ऐसी योनि नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, स्वयं उसी हयग्रीव के रूप में आए जिसका शीश घोड़े का है, और उस हयग्रीव को मार दिया उन्होंने। ऐसे भगवान है, क्या नहीं कर सकते। हाँ, ब्रह्मा जी के सारे वरदान जो हिरण्यकश्यप को दिए थे, कितनी लंबी लिस्ट थी उसकी, बड़ो सोच समझ के दिमाग लगा के, शस्त्र से अस्त्र से, जमीन में, आकाश में, पानी में, घर में, घर के बाहर, हाँ, सुबह सुबह शाम को, किसी प्राणी से नहीं, किसी पक्षी से नहीं, किसी मछली से नहीं, कितनी कंडीशंस थी, जैसे कि इम्पॉसिबल ही था मानो। अभी इसको मारना तो इम्पॉसिबल है, ये तो जीता ही रहेगा। लेकिन न केवल वो अद्भुत योनि में आए, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सारे वरदानों को सम्मान रखते हुए, बिल्कुल उनका आदर रखते हुए उन्होंने उनका वध किया। और जाकर एंड में बाद में ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, सॉस भी दिया कि अगली बार ऐसा वरदान मत देना, सोचना कि देखो ये वरदान देने से क्या आतंक मच सकता है। उन्होंने देखा है ना अभी कि इतना वरदान दिया, कितना अहंकार होके इसने कितना त्रास दिया लोगों को, 14.5 लोगों को, 14 भुवन में 14 लोगों के अंदर उन्होंने हाहाकार मचा दिया। तो ऐसे अद्भुत भगवान है, क्या नहीं कर सकते। तो ये भी उनका एक अद्भुत अवतार है। देखो आप जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं, हाँ, लकड़ी से बने हुए, दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, लकड़ी नहीं कहते, दारू ब्रह्म यानी कि जो दिव्य लकड़ी है इसके अंदर वो प्रकट हुए हैं। ऐसे कहते हैं कि विष्णु जी का एक बाल जो है वो सागर में गिरा और दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ, जिसके अंदर शंख चक्र पद्म गदा के चिन्ह थे, और यथावकाश उन्होंने राजा जो इंद्रदुम्न थे उसको सूचना दी स्वप्न में कि हम आएंगे कल, आप समुद्र में पहुंच जाना, हम प्रकट हो जाएंगे। तो बड़ा प्रकाश समुद्र में आया और दिव्य वस्तु समुद्र में दिखाई पड़ी, सब लोग भाग भाग के गए राजा इंद्रदुम्न के पास, महाराज महाराज हमारे समुद्र में दिव्य वस्तु प्रकट हो गई है। तो राजा को पता था कि भगवान ने स्वप्न दिया था, तो सेना हाथी और सब कुछ लेकर वो चले गए समुद्र में भगवान के स्वागत करने के लिए। और उस दारू ब्रह्म को उन्होंने बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, सम्मान के साथ में अपने आसन पर बिठाया जो हाथियों के द्वारा रथ में था। फिर बड़ी लंबी कहानी है उसकी, कैसे उनकी मूर्ति बनाई गई, ये भी बहुत अद्भुत रूप है, हाँ, जिसके पैर ही नहीं है, जिसके हाथ में उंगलियाँ नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी लंबी मुस्कान है उनके चेहरे पर। इसको कहते हैं महाभाव। महाभाव का मतलब है कि वो केवल 3 लोगों के पास में, और कोई भक्त संत उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। महाभाव यानी भाव, ये हृदय का जो भाव होता है भगवान के प्रति, उसका चरम सीमा जो है उसको महाभाव कहते हैं। वो केवल राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान स्वयं और उनका दोनों का मिलन यानी चैतन्य महाप्रभु, इन केवल 3 के पास में और किसी के पास नहीं। तो ये महाभाव इनके चेहरे पर प्रकट है, इसलिए इनका दर्शन बहुत बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए मत्था टेका चले गए, बड़े प्रेम से इनको देखना चाहिए, क्योंकि भक्तों को केवल दिव्य महाभाव पूर्ण दर्शन देने के लिए वो इस रूप में आए हैं। बड़ी बड़ी आंखें लेकर आए हैं, क्या रहस्य है इन आंखों का, ये प्रेम से भरी हुई आंखें हैं। जैसे आप देखते होंगे कोई आपके पास छोटा बालक होगा घर में, तो बालक को हम लोग अपनी गोद में लेते हैं, हाँ, और माता उसको स्तन पे दूध पिलाती है, तो जब वो दूध पिलाती है तो बालक के चेहरे को कितना प्रेम से देखती है, हाँ, बालक आंख बंद करके दूध पी रहा है, कितने प्रेम से, मतलब उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम भरा हुआ है हृदय में, भर भर के बह रहा है माँ के आँखों से, चेहरे से। उस समय माँ की आँखें जो होती हैं वो अंदर से लाल हो जाती है। कभी गौर से देखना, कोई आपकी माता, कोई मौसी, कोई हाँ होगी तो देखना आप जरूर। जब अति प्रेम का अनुभव करता है कोई किसी के प्रति, तो प्रेम व्यक्त करने वाले व्यक्ति की आंखों में लालिमा आ जाती है, कभी कभी उसके आगे जाकर अश्रु भी आ जाते हैं, उसको आनंदाश्रु कहते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, इनके भी आप देखिए, बराबर से देखिए उनकी आंखों के जो बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं उसके अंदर एक लाल बॉर्डर है ना, क्योंकि वो आप सब लोगों को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, इसलिए उनकी आंखों के अंदर लालिमा आ जाती है। वो हम सब उनके बालक हैं, उनको छोड़कर इस दुनिया में जी रहे हैं, शरीर को धारण करके देहधारी बन के जन्म मृत्यु चक्र का अनुभव करते हुए रह रहे हैं, उनके प्रति, हमारे प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है उनके प्रति, इसलिए वो सबको दर्शन देने के लिए और सबको निहारने के लिए आए हैं। तो जगन्नाथपुरी का क्या महत्व है? केवल वहाँ पे जाना और भगवान को देखना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम वही है। जस्ट गो देयर एंड सी द लॉर्ड। हम केवल सी द लॉर्ड नहीं, उसको हिंदी में वर्ड है निहारना, इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं उसके लिए। आप ऑब्जर्व बोलो तो भी इनकम्प्लीट है, आप सी बोलो तो भी इनकम्प्लीट है, आप लुक बोलो तो भी इनकम्प्लीट है, कोई भी आप यूज़ करो उसको, इंग्लिश भाषा उसको पर्याप्त नहीं है वर्णन करने के लिए कि निहारना मतलब क्या होता है। हर एक अंग को बड़े प्रेम से देखते हैं, प्रेम के साथ, भावना के साथ, कितनी बातें करते हैं वो देखते वक्त, हाँ हृदय से कितने भाव प्रकट होते हैं, कितने वाक्य प्रकट होते हैं, कितनी भावनाएं प्रकट होती है, उसे कहते हैं निहारना, अवलोकन संस्कृत में कह सकते हैं। और शब्द बहुत संस्कृत में हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में नहीं है, पाश्चिमात्य भाषा में नहीं है। तो इनका दर्शन जो है इतना अद्भुत है कि कई चमत्कारिक कहानियां भी हैं इनकी, केवल दर्शन की कहानियां। जैसे कि स्नान यात्रा के दिन आएगा अभी 26 जून को, हाँ पूर्णिमा का दिन है वो, ज्येष्ठ महीने का पूर्णिमा, उसके अंदर उनकी प्रतिष्ठापना की गई थी सत्ययुग में, बहुत लाखों साल पहले की बात है। राजा इंद्रदुम्न में पब्लिक में उनको स्नान कराया था, जब उनका आविर्भाव हुआ, जब उनका जो दारू ब्रह्म प्रकट हुआ तो उसके द्वारा मूर्ति बनाई गई, तीन मूर्तियां इस अवस्था में पूरी की गई। तो भगवान ने फिर आदेश दिया कि चिंता मत करना, ऐसा मत समझना कि आधा ही छोड़ के जो मूर्तिकार था वो अदृश्य हो गया, मुझे इसी रूप में आना था, यही मेरा रूप है जो मुझे कलयुग में आना था। मैं अभी कई अलग बार आपको कहानी बताऊंगा उसकी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा स्वागत करो, मेरा अभिषेक करो जनता के साथ, जनता के समक्ष। तो उनका अभिषेक किया गया। उस दिन एक भक्त आया, वो जो गणेश जी का भक्त था, हाँ गणपति का भक्त था, उसने सुना था कि ये जो भगवान है, ऑफकोर्स ये जो घटना हुई थी वो तो कई लाखों साल पहले सत्ययुग की बात है, मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल हम लोग इसी दिन को स्नान यात्रा मनाते हैं, इसी दिन में जगन्नाथ जी का स्नान होता है, उनको पब्लिक में लाकर नरेंद्र सरोवर में उनको स्नान कराते हैं। जगन्नाथपुरी बहुत अद्भुत जगह है। हाँ तो उस दिन वो आया वहाँ से, उसने सुना था कि ये जो है यही इंद्र के भी स्वामी हैं, यही सब देवताओं के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी भी यही है, और यही सब कुछ है, जगत नियंता, जगत पालक, जगन्नाथ यही है। तो ऐसा है क्या, चलो मैं तो गणेश जी का आराध्य करने वाला हूँ, देखते हैं जाके। तो फिर पहुँचता है स्नान यात्रा के दिन, और मन में ऐसा कहता है कि अगर है वो सब कुछ, सब देवताओं के स्रोत हैं, उगम है, और सभी निर्माण के भी निर्माण करता है, पालन करता है, सृजन करता है, तो अभी के अभी वो मुझे अपने आराध्य दैवत जो है गणेश जी का रूप में दर्शन दे। तो स्नान चल रहा था उनका, स्नान करते करते अचानक जो स्नान करा रहे थे पुजारी, उनके आंखों के सामने जगन्नाथ जी की सुंड निकल आई ऐसी, और बलदेव जी की भी सुंड निकल के आई, हाँ सुभद्रा जी की भी सुंड निकल के आई, वो हाथनी बन गई, जगन्नाथ जी हाथी बन गए और बलदेव जी भी हाथी बन गए, और सबने दर्शन किया उनका, तब जाके नतमस्तक हो गया चरणों में जाकर, और जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के दिन मंदिर में जगन्नाथ जी को गजवेश कराते हैं, गजवेश मतलब हाथी वेश श्रृंगार करते हैं इस घटना की याद में, क्योंकि भगवान ने स्थापन किया इस सत्य को कि सब कुछ मैं ही हूँ, हर जीव के अंदर मैं हूँ, हर कण के अंदर मैं हूँ, दो कणों के बीच में हूँ, दो अणु के बीच में हूँ, सब जगह मैं हूँ, सब सर्वव्याप्त हूँ। दूसरी जो कहानी मैं आज बताने वाला हूँ बहुत सुंदर कहानी है कि कैसे भगवान और भगवान के भक्त के बीच में रिश्ता होता है। थोड़ा पहले जगन्नाथपुरी के बारे में बताता हूँ, जगन्नाथपुरी में कैसे वो निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी में ये द्वारका के ऐश्वर्य भाव में निवास करते हैं, लेकिन द्वारका में रहते हुए ये वृंदावन के जो भक्त हैं उनके, उनसे विरह का अनुभव करते हैं, उनसे दूरी का अनुभव करते हैं, दुखी रहते हैं उनकी याद में, उनके स्मरण में। हाँ तो वो द्वारका के ऐश्वर्य में रहते हैं लेकिन ब्रज की याद में रहते हैं, इसलिए वो बहुत खाते हैं। आप जानते हैं जो बहुत दुखी होता है आदमी बहुत ज़्यादा खाता है, अपने दुख को दबाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा होती है उसको, शॉपिंग भी जगह करता है कभी कभी, हाँ ताकि मन उसका बहल जाए, दुख से हट जाए। लेकिन घर बैठे वो आदमी बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे अच्छे खाने की इच्छा होती है, इसलिए जो डिप्रेस लोग होते हैं ना उनका वजन बढ़ जाता है। वन ऑफ द साइंस ऑफ डिप्रेशन इज वेट गेन। जगन्नाथ जी वहाँ पर 56 भोग का आनंद लेते हैं, भोजन लेने के लिए वो जगन्नाथपुरी निवास करते हैं। दिन के अंदर 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं उनको, वो बड़े बड़े मटके में 720 किलो चावल का भोग लगता है उनको रोज और अन्न छत्र में खिचड़ी का प्रसाद सब गरीबों को बांटते हैं हर रोज। जगन्नाथ जी का ऐसा ऐश्वर्य है। एक मुसलमान माता जी आई थी, अपने घर में दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर ले आई थी, वो बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी के लिए। हाँ, बड़ी अद्भुत बात है। तो पुजारी ने उनको धिक्कार दिया, चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे हाथ का भगवान नहीं पा सकते। हटा दिया उसको, भगवान को अपना भोग लगा दिया किचन में से बना हुआ, पर्दा बंद किया। तो जगन्नाथ जी तो इतने प्रेमी भक्त हैं, वो किसी का सबका प्रेम लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा है ना, जन्म कर्म च विश्वात्मन। हाँ, वो केवल हिंदुओं के भगवान नहीं है, तो विश्व के भगवान है। विश्वात्मा मतलब सोल ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, वो थोड़ी भेदभाव करेंगे कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है हिंदू है, वो तो जगन्नाथ है। वो हिंदू नाथ और मुसलमान नाथ नहीं है वो जगन्नाथ है, सबके नाथ। हाँ, जिसको हम अल्लाह करके पुकारते हैं वही है वो, सबके लिए अलग अलग नाम से आते हैं। पर्दा बंद होता है, जगन्नाथ जी गायब हो जाते हैं, सीधे उस बुढ़िया के झोपड़ी में आ जाते हैं बालक बनकर। बोलते मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना खिलाओ। तो मैया रो रही है क्योंकि उसको वहाँ से हकाल दिया गया था ना, उसको उसकी खिचड़ी को ठुकरा कर उसको निकाल दिया गया था वहाँ से, तो रो रही है। लेकिन बालक का सौंदर्य देखकर बहुत खुश हो जाती है, इतना मधुर सौंदर्य इसका, इतना सुंदर चंचल चेहरा, इतना प्रेम से भरा हुआ। तुरंत खिचड़ी निकाल के दे दी, बड़े प्रेम से वो खाते हैं खिचड़ी, दोनों हाथ से खाते हैं। हाँ, और कुछ देर बाद में वहाँ घंटी बजती है। कौन सी घंटी बजती है? पर्दा बंद है ना, उनको भोग लगाया हुआ है, टाइम खत्म हो गया, भोग निकालने के लिए घंटी बजाते हैं और पर्दा खोल के फिर वो प्रसाद ले लेते हैं। जब घंटी बजती है तो ये तुरंत वैसे ही वहाँ से भाग के निकलते हैं। इनको दोनों हाथों हाथ को खिचड़ी लगी हुई है और मुंह पर भी खिचड़ी लगी हुई है, और जो जगन्नाथ के रूप में आगे खड़े जाते हैं वापस से। जब पर्दा खुलता है तो पुजारी क्या देखते हैं, इनको जो ऐसे हाथ हैं उसको खिचड़ी लगी हुई है और चेहरे पर भी खिचड़ी है, और कहीं नीचे खिचड़ी का भोग नहीं लगाया उनको बड़ा आश्चर्य होता है उनको, अरे खिचड़ी कहाँ से, ये सब हाथ को मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। सब चेक करते हैं, शायद गलती से कोई खिचड़ी अर्पण की हो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, खिचड़ी नहीं खाते। तो सब जाके ढूंढते हैं सब जगह पर, किसने लगाया किसने लगाया। तो फिर जाके बहुत लंबी कहानी है, बहुत ढूंढ के इनका एंड क्या होता है पता चलता है कि यहाँ पर खिचड़ी बनी थी केवल। उसके पास पूछते हैं उसको, एक बालक सुंदर सा आया था, खिचड़ी खा के गया और कुछ घंटी का आवाज़ आया तो भाग गया। मैं पूछती थी कहाँ से आए, कहाँ से, नाम पूछने के पहले भाग गया। तो सब पुजारी समझ गए कि जगन्नाथ जी को अपने भक्त के हाथ की प्रेम की खिचड़ी खानी थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के उसके घर पे गए और खिचड़ी खा के आए। फिर उस बुढ़िया को सम्मान से लिया, ला के उसको जगा दिया गया, बनाओ, और रोज उसके जीवन के अंत तक उस औरत के हाथ से खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया। आज भी उसकी याद में खिचड़ी भगवान को भोग लगाया जाता है और सब गरीबों को 10,000 लोगों को बांटते हैं रोज अन्न छत्र में, और कोई कमी नहीं जगन्नाथ के भंडार में। हाँ, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है और हजारों लोग प्रसाद पाते हैं रोज। जगन्नाथ जी का धाम ही प्रसाद के लिए बनाया गया। तो ऐसे जगन्नाथ जी की ये जो भक्तों के पर प्रेम करने की जो उनकी जो भावना है बहुत तीव्र है उनकी, क्योंकि वो जगत नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद मांगा था, अद्भुत अवस्था में उनको देखा उन्होंने और उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान आप मुझे वादा कीजिए कि इसी रूप में इसी आकार में आप कलयुग में अवतार लेंगे, ताकि कलयुग के हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो भूले हुए हैं भगवान को, वो आपको केवल देखकर ही प्रेम को प्राप्ति करें और प्रेम की प्राप्ति करके आपके धाम में चले जाएं, शॉर्टकट एकदम। क्योंकि जैसे मुझे आपको इस अवस्था में देखकर प्रेम का निर्माण हो रहा है हृदय में, ऐसा प्रेम का अनुभव मैं आपका भक्त होने पर भी मैंने पहले कभी भी नहीं किया था, और आज मुझे आपका भक्त होने पर भी ऐसा अनोखा अद्भुत प्रेम का अनुभव हो रहा है आपको देखकर, तो इसी रूप में आप आइए, तो आपको देखकर सब लोगों को भी ऐसा ही प्रेम का अनुभव होगा और वो प्रेम की प्राप्ति करके वो अपने धाम में, आपके धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो उन्होंने वादा किया था उनको, इसलिए वो आए, इसी रूप में प्रकट हो गए भक्तों को निहारने के लिए और भक्तों को उनको निहारने के लिए, मौका देने के लिए आए हो। और केवल देखते रहते नहीं है, चमत्कार भी करते रहते हैं, रिस्पांस भी देते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो जगन्नाथ जी का, ऐसा है कि उनके जगन्नाथ जी के धाम में जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले एक परिवार होता है, उनके ही परिवार के लोग पीढ़ियों पीढ़ियों तक जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। फिर सुभद्रा जी का भी परिवार है, फिर बलदेव जी का भी परिवार है, ऐसे परिवार में ही उसकी सेवा आती है। तो जगन्नाथ जी के परिवार में एक बड़ा बुजुर्ग भक्त था, पुजारी था, 25-30 साल तक उन्होंने अपनी जवानी से बुढ़ापे तक सेवा किया, बहुत बूढ़ा होने लगा वो। उनको मन में एक बार प्रश्न आया कि अरे 25-30 साल 50 साल सेवा किया, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी ने मेरा सेवा स्वीकार किया कि नहीं किया, क्या प्रूफ है उसका, मैं तो करते आ रहा हूँ रोज। तो एक दिन ऐसे बोले, भगवान जगन्नाथ जी अगर मेरी सेवा को आप स्वीकार कर रहे हो तो कुछ मुझे इंडिकेशन दो, कुछ मुझे इशारा दे दो, कुछ ऐसा प्रूफ दे दो कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई आपने स्वीकार किया है। तो जगन्नाथ जी उसको बोलते हैं, उसके हृदय में बोलते आज के शाम की आरती में एक अद्भुत घटना होगी, एक अद्भुत व्यक्ति को आप देखोगे और देखोगे तब समझ जाओगे कि मैंने आपकी सेवा को स्वीकार किया है, उसका आना ही आपके सेवा का सर्टिफिकेट है। तो ये दिन भर वेट कर रहा है, उसको एक एक समय जो है युग के समान लग रहा है, कब संध्या होगी और कब मैं वो चमत्कार देखूंगा। सब राजभोग आरती होती है, उत्थापन आरती होती है, संध्या आरती होती है, संध्या आरती कभी सब खत्म होने लगता है, कोई नहीं है, सबको देख रहा है, एक एक आदमी को देख रहा है, कौन कौन आ रहा है, हजारों लाखों लोग आते हैं, उनको गिनना और देखना कोई आसान काम है। आप देखिए जगन्नाथ मंदिर में ऐसा कोई समय नहीं है साल के अंदर इस मंदिर में कोई ना हो, हाँ सब खचाखच भरा रहता है हमेशा मंदिर। रात को 12 बजे हम गए थे दर्शन करने के लिए, चंदन दर्शन करने के लिए 11:30-12 बजे, तभी भी मंदिर में भीड़ थी। ऐसे जगन्नाथ भगवान है। तो फिर संध्या आरती हो गई, संध्या आरती के लोग प्रसाद लेकर जाने भी लगे और सब मंडप खाली होने लगा, तभी भी कोई नहीं आया। तो उसको लगा मेरा जीवन जो है व्यर्थ गया, 50 साल सेवा किया, भगवान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया उसे। अचानक एक आम आदमियों के हाइट के 3 गुना हाइट वाला आदमी आया। उसने राजा के वस्त्र पहने थे, हाँ पूरा राजा का अंगरखा पहना था, उसकी मुकुट पहना हुआ था, अलंकार पहने हुए थे, बाजू बंद, नो कलाई में बंद, मनकटी बंद, ऐसा पूरा अलंकार से सजधज कर चमकता हुआ आदमी, काले रंग का था, बहुत अद्भुत आदमी था वो, एकदम विचित्र आदमी था। उसने प्रवेश किया वहाँ पर, तो ये देखिए एकदम आश्चर्यजनक हो गया इसको देख के। और उसको ये भी ध्यान में आया कि वो सबके बीच में है, जाने वाले लोगों के बीच में है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को देख के उनको आश्चर्य होते हुए नजर नहीं आ रहा ना, समझो कोई अचानक कोई ऐसा अद्भुत आदमी बीच में आता है, सब लोग मुड़ के देखेंगे ना उसको, अरे कौन है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, सब लोग अपना अपना आराम से जा रहे हैं। तो उसको ये भी समझ में आया कि केवल मुझे ही दिखाई पड़ रहा है ये आदमी। उधर आराम से सबके बीच में से आया, जगन्नाथ को वंदन किया उसने। उधर एक ऐसा रिवाज है कि बड़ा डंडा ऐसा पकड़ के पूरा पुजारी खड़े रहते, उसके आगे किसी को जाने देते नहीं, वहाँ तक आते हैं और सबको वापस कर देते हैं, कुछ ऐसा हाथ में उनका रहता है, वो सबके सर पर मारते रहते हैं, झाड़ू की तरह रहता है, वैसे सबको आशीर्वाद को भी मारते हैं, वहाँ से विदा कर देते हैं। तो वहाँ तक वो आदमी आया, डंडा था बीच में, उसके आगे नहीं गया, फिर सब लोगों ने उसको सर पे ऐसे किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कौन व्यक्ति है, और वो जाने लगा। तो ये व्यक्ति पुजारी था, पुजारी के जगह पर जगन्नाथ जी के पास खड़ा था, वहाँ से उधर के भाग भाग के आया और भाग रहा उनके पीछे, महाराज जी जा रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे, बहुत दूर तक भागते ही, और महाराज जो कभी अदृश्य होना है ना, तो वो देख रहे भी, मतलब क्या हुआ, नहीं महाराज जी आप बताइए आप कौन हैं, मतलब मैं कौन ही, मैं तो रोज का आने वाला हूँ यहाँ पर, रोज आरती में आता हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं रोज शाम को यहाँ रहता हूँ, पूरा दिन जगन्नाथ की सेवा करता हूँ, बताइए आप कौन है। तो मैं कौन नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ, जगन्नाथ के दर्शन करने आता हूँ। नहीं महाराज जी आपको बताना ही होगा, ऐसे बहुत गिर जाता है, चरणों में गिर जाता है, आप बताइए आपका परिचय दीजिए। तो बहुत देर के बाद में वो बताता है कि मैं महाराज विभीषण हूँ, लंकाधिपति विभीषण, मुझे राम जी का आदेश है, इसलिए मैं हर संध्या आरती को जगन्नाथपुरी में आता हूँ। तो ये गदगद हो गया, क्योंकि उसको प्रूफ भी मिल गया ना कि भगवान की सेवा मैंने की है, भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार की, इसका भी प्रूफ मिला उसको, एकदम भावना से गदगद हो गया और गिर गया उनके चरणों में। महाराज जी कुछ आपका क्या कहते हैं उसको निशानी दीजिए, कोई निशानी, हाँ कुछ मेमोरी। तो अपने हाथ का एक बड़ा कंगन निकालता है और पुजारी के हाथ में देता है और उधर से अदृश्य हो जाता है। तो आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि वो जो कंगन है वो पुजारी के घर में अभी भी है जगन्नाथपुरी में, और वो पुजारी का देहांत हो गया कुछ साल के बाद में, लेकिन वो अभी लीगल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो गई है। होता है ना ऐसे, कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें होती तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर लेती है उसे, तो इस बार यात्रा में गए थे हम लोग, तो बहुत कोशिश किया वहाँ पर जाने का, एक सोल एम था कि वहाँ जगह जाना है, लेकिन वो पता चला कि वो जगह जो है बहुत सालों से बंद है किसी डिस्प्यूट की वजह से, और दर्शन नहीं होता है उसका। लेकिन उस घर में वो कंगन अभी भी है जहाँ वो पुजारी का घर था। तो ऐसे जगन्नाथ जी हैं। हाँ, मैं आपको धीरे धीरे करके सब कहानियाँ बताऊँगा, लेकिन एक कहानी जो आज बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए कि कैसे भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं और कैसे वो उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रेम का अनुभव देते हैं, और कैसे वो प्रूफ देते हैं कि मैं आपका पालनकार आप ही हूँ, मैं हूँ आपका पालनकर्ता, मैं ही हूँ। ऐसा ही एक भक्त था उनका, उसका नाम था बंधु मोहंती, बंधु मोहंती उसका नाम था। और ये गरीब बेचारा व्यापारी था, कुछ ना कुछ बेचकर पैसे कमाता था, लेकिन इतना प्रामाणिक था, रोज शाम को बिजनेस करने के पश्चात घर पे आके उसका हिसाब किताब जो है, परचेस कितना किया, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब कुछ जगन्नाथ को आके बताता शाम को आरती के समय। रिकॉर्ड होता ना ऐसा, हम लोग मंदिर में सुबह करते ना कि कल सुबह, कल दिन भर में इतने पुस्तकों का वितरण हुआ, इतने लोगों को माला दिया, सब भगवान को स्कोर बताते हैं, फिर पर्दा बंद करते हैं सुबह का। तो वैसे शाम को संध्या आरती के समय ये रोज़ भगवान को अपना हिसाब किताब देता था। लेकिन दुर्भाग्य उसका ये था कि उसकी परचेस का खर्चा और सेल का अमाउंट और मुनाफे का अमाउंट दिन ब दिन कमते 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 होते गया। परचेस उतना ही, लेकिन सेल और प्रॉफिट जो था वो कम 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 होते गया। धीरे धीरे वो सब घाटे में जाने लगा, सब कुछ उसका नुकसान हो गया। फिर भी वो रोज़ बड़े प्रेम से उनको रिपोर्ट दिया करता। एक दिन ऐसा समय आया, उसके कई बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे उसको, उसकी बहुत बड़ी अच्छी भक्त पत्नी थी उसकी। एक दिन पूरा कंगाल हो गया, वो कंप्लीट कंगाल हो गया, सब कुछ जो भी था सब लुट गया उसका, सब कुछ बिजनेस खत्म हो गया उसका। तो वो पत्नी बहुत परेशान हो गई, बच्चे भूखे रोने लगे, तो कुछ दिन मांग के लाया वो भी ख़त्म हो गया, उधार लाया वो भी देने के लिए पैसा नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो पत्नी कहती है कि तुम्हारे जगन्नाथ जी कुछ करें क्या इसके लिए, कुछ करो, पूछो उनको, बताओ कुछ। तो कहते नहीं, मेरा एक मित्र है वो उड़ीसा में रहता है, हम उनके पास चलेंगे। ऐसा करके वो सुन के, बड़े बच्चे भूखे, भूख से व्याकुल है, दुबले पतले हैं, भूखे हैं, कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, और ये भी कांप रहे हैं भूख की वजह से, पत्नी भी कांप रही है भूख की वजह से, और बड़े स्वाभिमानी थे, कोई भिक्षा नहीं करते थे किसी को, जाके उधार ले सकते हैं लेकिन उसका भिक्षा नहीं करते थे कभी, किसी का दिया हुआ कोई दिया प्रेम से तो खाते थे, लेकिन कोई साधन नहीं है, सब लोग ऐसे दुर्बल होकर कमज़ोर होकर घर में पड़े थे। तभी वार्तालाप करते हैं, ये फिर भी शांत है हृदय से, जो भी जगन्नाथ करते हैं अच्छा करते हैं, जो इनकी इच्छा है जैसे रखना है वो रख सकते हैं, मैं तो उनका दास हूँ, जैसे उनको रखना है वो रख सकते हैं, मुझे कोई बात नहीं। पत्नी कहती है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बच्चे मर जाएंगे भूखे। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो हम लोग कहीं जाते हैं यहाँ से, और ऐसा झूठ मूठ का बोलते हैं कि मेरा उड़ीसा में एक मित्र है। तो मित्र की बात सुनकर कहते हैं बड़ा धनी है और बड़ा दोस्त भी मेरा है, सबकी आँखें खिल जाती है, अरे चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा। ऐसे करते सबको लेकर, सब कुछ जो भी ख़त्म है सब कुछ, सब बेच के सब खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, थोड़ा बहुत कपड़ा लगता है, थोड़ा बहुत बर्तन है, सब पैक करके वो चलने लगते हैं। उन दिनों में कहीं साधन नहीं था ऐसा, कोई राजा के पास घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, गरीब के पास क्या होगा, पैदल चलना है। तो पैदल चलते 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 कई दिन तक चल रहे हैं, रस्ते में सो रहे हैं, कुछ मिला तो खा रहे हैं ऐसे ही, लेकिन आधे भूखे भूखे पेट चल रहे चल रहे चल रहे। तो जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पर आ जाते हैं और रात को सोते हैं वहीं पर। फिर बच्चे पूछते हैं पापा वो तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, उनका घर कब आएगा। तो ये कैसे बताएं कि मैं जगन्नाथ के पास उनको ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता था कि जगन्नाथ को कभी मांगना नहीं चाहिए कुछ, कि हमको ये दो खाना दो, थोड़ी इतनी भक्ति सस्ती होती है, इतना चीप होती है कि जगन्नाथ के बोलो जाके पैसा दो खाना खिलाओ, वो सब जानते नहीं क्या, वो सब जानते हैं। मैं तो उनका सेवा करने वाला चाकर हूँ, मेरा काम सेवा करना है और सेवा मांगना है, पैसा और रोटी और चावल मांगना नहीं है। तो उनको संकोच हो रहा था, बोले तो आएगा आएगा दोस्त आएगा। ऐसा करके सोते हैं रात को, और रात में फिर कल सुबह उठकर चलते हैं और लास्ट डे जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी में आते ही ये जो है चक्र को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत खुशी होती है हृदय में कि मेरे स्वामी के पास में पहुँचा हूँ मैं। बच्चे रो रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुशी भी है कि अभी दोस्त मिलेगा, लडुआ खाने को मिलेगा, हाँ पंच पकवान मिलेंगे। तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते दर्शन करते हैं, और जो वहाँ पर एक सिंह द्वार है उसके आगे एक दूसरा द्वार है जहाँ पर जो चलता है ना वो अन्नक्षेत्र चलता है ना, वहाँ पर भी वो जाता है लेकिन सब खाना खत्म हो जाता है, रात का समय हो जाता है, तो वहीं पर वो सो जाते हैं भूखे। अब इतनी भूख लग रही है तो भूख की वजह से कमज़ोर होकर सब लोग को नींद भी जल्दी आ गई और सब लोग सो गए, ये भी सो गया। और कुछ देर बाद में बंधु मोहंती करके कोई ब्राह्मण पुकार रहा है, तो उनके लगेगा बंधु मोहंती तो बहुत सारे होंगे, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, किसी को बुलाता होगा तो मुझे क्यों बुलाएगा वो, मैं तो परदेसी हूँ यहाँ पर। बोलते बंधु मोहंती जाजपुर के बंधु मोहंती, क्योंकि वो जाजपुर से था। बोले मुझे बुला रहे हो? हाँ तुम्हें बुला रहा हूँ, जाजपुर से आए हो ना बच्चों को लेकर। हाँ ये लो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अंधेरे का समय था, इतनी बड़ी थाल थी उसके पास, उस थाल के अंदर सभी प्रकार के व्यंजन थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, उसकी खुशबू से बच्चे जग गए। जो थाल लेके आया उसकी खुशबू से बच्चे जग गए, बोले अरे दोस्त आ गया, मेरे पापा का दोस्त आ गया, कुछ खाना लेके आया। वो पता नहीं कहाँ है क्या है, उनको खाली खुशबू आई, उनको खाना है बस, सब लोग के मुँह में पानी आ रहा है। और वो ब्राह्मण दादा जल्दी में हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, आप तुरंत खा लो इसको, मैं बाद में आके थाली ले जाऊँगा, मेरा व्यस्त हूँ, मैं जरा भगवान के साथ सेवा में कुछ काम है मुझे, तो थाली रख के चला जाता है। तो बच्चों को, बच्चे उठ जाते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से खाना खाते हैं, बहुत खुशी होती है उनको, और खाते हुए उनको बहुत दिव्य अनुभव भी होता है, ऐसा आनंद होता है जैसे उनको पहले कभी नहीं आया था। जब एक एक व्यंजन खा रहे हैं तो उनको हृदय में से इतना आनंद के फव्वारे उड़ रहे हैं, मतलब इतना अद्भुत रुचि, इतना अद्भुत अनुभव कभी भी नहीं आया भगवान का अन्न खा। और अंधेरा था तो उसको पता नहीं चला कि वो थाल किस चीज़ का था। वो थाल जो था वो सोने का था, स्वर्ण से बना हुआ था, और उसको बहुत सारे हीरे मोती रत्न माणिक लगे हुए थे, क्योंकि जगन्नाथ जी का थाल था ना, वो रत्नों से भरा हुआ था वो। लेकिन अंधेरे में उनको नजर नहीं आया, तो वो क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े के नीचे रखा और तकिया बना के सो गए। इतने में सुबह हो गई और वो रुकते रहे बहुत देर तक, क्यों तकिया बनाया उसका, अरे ब्राह्मण आया नहीं, तो कह के गया था कि आएगा, कुछ देर बाद आने वाला था थाल लेने के लिए, तो आया नहीं। बहुत देर तक ये ढूंढ ढूंढ के ऐसे आगे पीछे जाके आता है, कोई आता नहीं बीच रात में, तो फिर कल सुबह कोई आएगा पूछने के लिए। तो फिर वो अपना जो कपड़ा है उस पर डालते हैं और उसको तकिया बनाकर सो जाते हैं। सुबह जब मंगला होती है तो पता चलता है कि थाल गायब है। सभी पुजारियों को पता चलता है कि ये बड़ा थाल जो था राजभोग का अर्पण करते हैं, उसके अंदर बड़ा भोग जो था ना संध्या का दोपहर का, वही थाल गायब है। तो राजा को खबर पहुंचती है, सभी पुलिस लोगों को मालूम पड़ता है, सभी मंत्रियों को खबर चलती है कि इतना बड़ा थाल गायब कैसे हो सकता है। तो सब लोगों को भेजते हैं ढूंढो, जैसे पता चलता है ना कि यहाँ कोई आतंकवादी आया हुआ है, सब नाकाबंदी करते हैं ना सब जगह भी, सब जगन्नाथपुरी की नाकाबंदी करते, कोई यात्री यहाँ से बाहर ना चला जाए, कोई किसी ने पुजारी को फितूर करके पैसा दे के कुछ चोरी ना की हो। सब ढूंढ ढूंढ के आते हैं और ये ऐसे आधी नींद में हैं, खुशी से सो रहे हुए ना पेट भर के खाना खा के। पुलिस वहां पर भी आते थे, कोई बाहर का आदमी फटीचर आदमी आए, ए उठो यहाँ से, तो जब वो हटते हैं तो थाल लेके हटते हैं ना, थाल इनके हाथ में है, इतना बड़ा थाल सोने का रत्नों से भरा हुआ, अरे तुमने चोरी किया। बोला नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, रात को एक ब्राह्मण आया था, उसने हमको इतना खाना भर के दिया, सब बच्चों को खिलाया। बोले अच्छी कहानी बनाते हो, हाँ कोई मिला नहीं क्या तुमको बताने के लिए, चलो अरेस्ट करें इनको। थाली लेते हैं, राजा को खबर कर देते हैं कि थाली मिल गई है और किसी गाँव के आदमी के पास मिली थी, और ऐसा कहानी बना रहा है कि इधर का पुजारी रात को आया और खाना खिलाया, हमने बहुत भरपेट खाना खाया, चलो जेल में बंद कर दो इनको। जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन जेल का नियम क्या होता है, जेल में 3 बार खाना मिलता है ना, नहीं मिलता है बंद कर देते हैं उनको। बड़ी परेशानी होती है, अरे पापा आपके दोस्त ऐसे कैसे हैं, खाना खिलाते हो जेल में डालते लेकिन उनको अंदर की कहानी मालूम नहीं है कि क्या इसका रहस्य है। उनको बहुत डांटते पीटते हैं उधर, पीटते नहीं डांटते हैं कि चोर हो तुम, बाहर गांव से आए हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, बताओ सच कुछ कहाँ से लाया, कैसे अंदर गए मंदिर के, कैसे पहुंचे बताओ। तो बार बार बता रहा है कहानी, बार बार बता रहा है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। तो रात को, उस रात को एक दिन जेल में रहने के बाद रात होती है, तो 3 बार खाना तो मिलता है उनको ना, इतने महीने से भूखे हैं, लेकिन सुबह दोपहर को रात को खाना तो उनको मिलता है। तो उस रात में राजा जो है ओरिसा के, जिसको आज भी गजपति कहते हैं, हाँ जो जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो अधिकार उनके पास में है, उसके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और बहुत उनकी निर्भत्सना करते हैं, बहुत डांटते हैं उनको, कैसे राजा हो तुम, मेरा दोस्त जो है बंधु मोहंती को अरेस्ट कर दिया तुमने, बेचारा भूखा था, मैंने उनको थाली भेजी थी प्रसाद की और उसने खाई बड़े प्रेम से, और तुमने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, कितने बड़े अपराधी हो तुम, जाओ तुरंत मेरे दोस्त को रिहा करो, अच्छा घर बना के दो, अच्छी नौकरी दो, खाने पीने की व्यवस्था करो, कभी भूखा रहना चाहिए हो। राजा तुरंत भागता है नींद से उठ के, भाग भाग के जेल में जाता, खुद स्वयं सब परेशान हो जाते जेलर लोग, अरे राजा स्वयं जेल में इतनी रात गए क्या कर रहा है। हाँ हरे कृष्णा, कम से कम नींद तो खुल गई, हरि बोल हाँ सब लोग पहरेदार भी सोए थे जेल में ऐसे ही, सब जग गए एकदम, अरे राजा रात को जेल में क्या क्या हुआ क्या, सब चिल्ला चिल्ला राजा को, कौन है यहाँ पर, किसने अरेस्ट किया, किधर है बंधु मोहंती तो सब बोलते हैं कि अभी के अभी रिहा करो उनको। और तुरंत मंदिर के जो चीफ अधिकारी है उसको फोन करते हैं, फोन नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इनको जगन्नाथपुरी मंदिर में एक रिवाज है कि घटनाओं का रजिस्टर करने के लिए एक आदमी रहता है वहाँ पर, उसके एक पूरा डिपार्टमेंट है कि जगन्नाथपुरी के अंदर में क्या क्या घटनाएं होती है, कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, क्या क्या होता है, अद्भुत घटनाएं उनका रिकॉर्ड रखते हैं वो, और उस डिपार्टमेंट में उसको नौकरी देते हैं उस अधिकारी को इन्फॉर्म करके, और उस अधिकारी को नौकरी देने के बाद, अधिकार के रूप में देने के बाद में एक बड़ा घर बना के देते हैं उनको, और उसका अन्न धान्य का भंडार जो है भर देते हैं। और राजा और एक आदेश देता है कि जगन्नाथ जी उनको आदेश देते हैं स्वप्न में कि रोज मेरा राजभोग का थाली जो है उनके घर में पहुंचना चाहिए तो वो जो इतना भक्त था भगवान का, बच्चे बोल रहे थे बार बार चलो भगवान से कुछ मांगो, आप उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन वो भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं उन्होंने, तो सब जानते हैं वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरा काम उनसे मांगना नहीं है, सेवा करना है उनकी, सेवा मिलेगी तो करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्यों रखा भगवान ने उनको इतना दिन भूखा, क्योंकि उनको अपने चरणों में रखकर भर पेट महाप्रसाद खिलाना था उनको, इसलिए वहाँ का बिजनेस सब फेल कर दिया उनका, सब कुछ लुटा दिया उनका, सब कुछ छीन लिया उनसे, सब कुछ जो भी उनका था, जो उनको लग रहा था मेरा है, हाँ उनको पता नहीं चल रहा है कि लॉस क्यों हो रहा है, मैं इतना प्रामाणिकता से बिजनेस कर रहा हूँ, इतना भक्त हूँ भगवान का, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, एक एक करके दिन करके गरीबी आती जा रही है, जो भी कुछ है सब खोता जा रहा है, ये सब भगवान की दिव्य योजना है। हाँ जब हमारे जीवन में कब नुकसान होता है, कभी हम फेल हो जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, कुछ पैसा कुछ चोरी हो जाती है, बोलते क्या है, अरे देखो तुम इतना भगवान की भक्ति करते हो क्या फ़ायदा है, देखो हमारे घर में चोरी नहीं हुई, तुम्हारे घर में चोरी हुई, तुम तो हमारे पड़ोसी हो, हमारे घर में नहीं आए तुम्हारे घर में आए, क्या फ़ायदा है भगवान का तुम्हारा, छोड़ दो भक्ति वक्ति सब, हम सोचते रहे ऐसा, कुछ बीमारी आ गई, अरे हमको ही होनी थी क्या, इतने लोग पापी लोग दुनिया में रहते हैं उनको बीमारी नहीं होती, हमको ही होना चाहिए, हम इतना दिल से भगवान की माला जप रहे हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किधर जाते हैं, डोनेशन देते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एकादशी का करते हैं, मदर मेरी का करते हैं, रमजान का करते हैं, हमको ही सब तकलीफ क्यों आ रही है, हमारी श्रद्धा को ऐसा हिलाने के लिए लोग बोलते हैं इसे। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि जो भी बुरा होता है वो कभी बुरा नहीं होता है, वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर उसने सोचा होता उस समय, अरे खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, कमजोरी की वजह से सो रहे हैं, उनको इतनी दुर्बलता है कि नींद आ रही है, उनको हाथ हिलाने को शक्ति नहीं है, ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं मेरी जिंदगी में, कभी उसके मन में प्रश्न नहीं आया ऐसे। तो वो जानता था इसका अर्थ क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी अच्छे के लिए हो रहा है ये उसको पता था। इतना महीना कष्ट था उसने, हाँ रस्ते पे सोना पड़ा उसको, जहाँ पर गाय भी अपना खाना खाकर जो है उसका भी पेट भर जाता है, वो भी नहीं खा सकती, ऐसा सड़ा हुआ अन्न जो है वो छोड़ देती है, उधर जाके सो गया वो। फिर रात को भगवान ने तो खाना खिलाया, बाद में कितना अपमान हुआ, कितनी डांट पड़ी उनको, अरे अभी तो प्रसाद खिलाया, बाद में डंडे गिर रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है, ये कैसे भगवान है हमारे, भगवान ने यह सब कुछ क्यों किया। राजा को स्वप्न दिया भगवान ने, हाँ उसको आदर के साथ सम्मान के साथ में रिहा किया गया, नौकरी दी गई, जगन्नाथ का महाप्रसाद का प्लेट का परमानेंट ऑर्डर दिया गया महल बना दिया उसको, हाँ घर का पूरा समृद्धि बना दिया उसका। तो इतना ऋणी था वो, क्या करता था, जगन्नाथ जी का थाल उसके घर में आते ही तुरंत बाहर जाकर, कोई भूखा है इसको अन्न चाहिए, कोई भूखा है करके पूरे समाज में घूमता था वो, और सबको बांट के जो बचता था वो घर आके खाता था जीवन भर, जीवन के अंत तक। आप बोलेंगे बढ़िया यार, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, पहले खा लो बचाओ बांटो किसी को, सबसे पहले जाकर बांट रहा है, आते ही जाकर हाथ में उठाकर प्रेम से पुकार रहा है जाके, कोई भूखा है जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहता है, ऐसे करके बांट के, वो तो अक्षय पात्र है भगवान के प्रसाद का, हाँ इतना बांटने के बाद भी खत्म नहीं होता था वो, इनको पूरा बाद में सबसे एंड में खाने के बाद भी बचता था, फिर भी उसको बांटते रहते थे। ये सब क्यों किया भगवान ने, अपने भक्त के प्रेम को प्रतिसाद देने के लिए, अपने अपने पास में रखने के लिए ये सब लीला किया भगवान ने, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनै, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, तो सबसे पहले उसको सब कुछ देता हूँ। अगर उसमें वो रत हो गया, आनंद हो गया उसको, तो अच्छे रहो, बने रहो, पैसा लो, समृद्धि ले लो, प्रमोशन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, खुश हो गए तो बढ़ो, बैठे रहो, मैं चलता बनूंगा। लेकिन जब भक्त फिर भी उनसे प्रेम करता है, फिर भी उनकी भक्ति को छोड़ता नहीं है, तो फिर तस्याह अनुगणामी हरिष्ये तद्धनम शनै, धीरे धीरे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ उसका धन, जिस चीज़ में उसको आसक्ति है, पत्नी में है, पैसे में है, प्रॉपर्टी में है, इसमें उसमें है, सौंदर्य में है, शरीर के भोग में, जहाँ जहाँ उसका मन लगा हुआ है, सब उसे छीन लेता हूँ, पूरा उसको लक्ष्मीहीन कर देता हूँ। फिर क्या होता है, फिर मुझी पर शरण आता है, सब कुछ खोने पर मुझी के मेरे चरणों में शरण में आता है, तब मैं उसको अपने आप को अर्पण करता हूँ। जब सब कुछ खोने पर वो मेरा चरण नहीं छोड़ता है, तब मैं स्वयं जो सभी लक्ष्मियों का नाथ हूँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमान हूँ, जिनकी अनेक हजारों लख लक्ष्मियाँ सेविकाएँ हैं, ऐसा मैं लक्ष्मीनाथ जो हूँ, मैं अपने आप को उनको अर्पण कर देता हूँ, मैं उनका बन जाता हूँ, उनका दास बन जाता हूँ। जैसे वो बलि महाराज के दास बनने के लिए द्वारपाल बने थे, हाँ, अपने आप को अर्पण कर देते हो, बेच देते अपने आप को, और कहते भी हैं कि मैं इनके हाथ की कठपुतली हूँ, ये मुझे कभी भी बेच सकते। तो अपने प्रिय भक्त को जो संकट के समय पर भी जगन्नाथ की भक्ति को नहीं छोड़ते, उनके बारे में जरा भी उनका कणभर भी विचार बदलता नहीं है, उसको प्रतिसाद देने के लिए भगवान उसको लक्ष्मीहीन कर देते हैं, और वहाँ से उसको जगन्नाथपुरी में खींच के लेके आते हैं, अपने मंदिर के बाहर सुलाते हैं, पहले महाप्रसाद खिलाते हैं, फिर जेल में डालते हैं, फिर उस दिन का खाने का व्यवस्था करते हैं, फिर राजा को सपने देते हैं, और उनकी पूरी जीवन के अंत तक उनके चरणों में रहने की व्यवस्था करते हैं। और ऐसा सुंदर भक्तिमय जीवन जगन्नाथपुरी में बिताने के पश्चात जीवन के अंत में वो और उसके परिवार पूरा जगन्नाथपुरी के भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ धाम में उनका मुक्ति हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, हाँ, साधारण भगवान नहीं है, आपको लगता होगा लकड़ी है, हाँ, क्या है सब, कुछ लोग बोलते हैं ये तो लकड़ी है, पत्थर की मूर्ति है, क्या उसमें कौन भगवान है उसके अंदर, नहीं, अगर आपके अंदर भाव है तो साक्षात भगवान उसके अंदर है, आपको रिस्पॉन्स देंगे। अगर भाव नहीं है तो लकड़ी है, पत्थर है, पेंटिंग है, पेपर है, हाँ, यह हमारा भाव के ऊपर डिपेंड है। हम अगर मानते हैं कि भगवान है तो भगवान हमारे लिए रिस्पॉन्स देने को तैयार है, अगर नहीं मानने को तैयार है तो फिर वो पत्थर है हमारे लिए। ऐसे अनेक चमत्कार श्री जगन्नाथपुरी धाम में होते रहते हैं, हो चुके हैं, उनके अनंत कहानियाँ के अनंत किताब उपलब्ध हैं। और अक्सर ऐसे अलग अलग जाति के, शूद्र जाति के, अलग धर्म के ऐसे भक्तों का वर्णन उसमें आता है, क्योंकि बताने के लिए भगवान बताते हैं कि मैं किसी एक धर्म का, किसी जाति का, किसी एक देश का भगवान नहीं हूँ, मैं पूरे सृष्टि का निर्भगवान भगवान हूँ, सब जीव मेरे बालक ऐसे हैं। केवल मनुष्य ऐसे नहीं बताया कि मनुष्य आत्मन जन्म कर्म च मनुष्य आत्मन, केवल जो मनुष्य है उसका मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं, सभी योनियों के, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, मछली, पेड़ पौधे, जितने भी जीव हैं वो सबके स्वामी और मालिक और तारणहर्ता वही हैं, और सबको वो अपना कृपा देते हैं, जो भी उनको चाहते हैं उनको कृपा देते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब लोग अपना मन जो भौतिक दुनिया में लगा हुआ है, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, उसमें से निकाल कर उनके चरणों में लगे, उनकी कृपा प्राप्त कराने के लिए वो बार बार, कभी नरसिंह के भगवान के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी जगन्नाथ के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कुर्म के रूप में, सभी अवतारों में अलग अलग आते रहते हैं, ताकि हमको उनकी लीलाओं का परिचय हो, हमारे हृदय में उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, अट्रैक्शन उनके लिए दोबारा उत्पन्न हो। इसलिए आखिर में कुछ भी हम सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, कलियुग के लोग बहुत ही पतित है, उनको कोई बुद्धि नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है उनके अंदर, जीवन भी बहुत छोटा है, उनकी स्मृति जो है मेमोरी वो भी ख़त्म है, कोई है नहीं कुछ ऐसा अच्छा गिनने वाला गुण है नहीं उनके अंदर, क्या यज्ञ करेंगे मेरा, क्या तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे जंगल में जाकर सब कुछ छोड़कर, क्या विरक्त बनेंगे, क्या सन्यासी बनेंगे, कुछ नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, क्या गुण है नहीं कुछ, तो क्या करें अभी, मैं तो उन पर प्रेम करता हूँ, क्या करना चाहिए, बोले कोई बात नहीं, जितने वो पतित हो जाएंगे उतना अधिक कृपा मैं करूँगा उनके पर, अभी मेरा नाम ही भेजूंगा कलयुग में और ऐलान करूँगा जो भी मेरा नाम को पुकारेंगे बस उनको मेरे धाम में ले जाऊँगा। इस समय पर कोई भी मेरे नाम को पुकारेगा, श्रद्धा से और प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं उसी का हो जाऊँगा। चैतन्य महापुरुष स्वयं आए अद्भुत 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 रूप में। इतने बार आए तो भगवान बनकर ही आए, कभी आधा सिंह आधा मनुष्य, कभी वामन, कभी सब विष्णु रूप में आए, परंतु भगवान के रूप में आए। लेकिन अभी कैसे आए? भक्त बनकर आए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था उनका, कभी भी नहीं आए ऐसे, भक्त बनकर आए, स्वयं स्वयं के भक्त बनकर आए। और क्या करने को आए? स्वयं उनका नाम लेकर आए, भक्त बनकर सबको बांटने के लिए। दो चीज़ किया, एक भक्त बनकर आए और एक नाम लेकर आए, और अपने हाथ से सब लोगों को बांटा। ऐसा नहीं बोला इंद्र तुम जाओ मेरा नाम सबको बांट के आओ, हाँ मुझे रिकॉर्ड रिपोर्ट देना बाकी क्या क्या किया तुमने, ऐसा नहीं। स्वयं आए। स्वयं कौन सा काम करते हैं हम लोग? जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है हमको काम ना, वो हम खुद करते हैं। हमारे घर में फंक्शन होगा ना कुछ, तो सब काम बांट देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो अपने पास रखते हैं। आपका विश्वास नहीं कि कोई अच्छी तरह से करेगा कि नहीं करेगा, बाकी सब काम बांट देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो खुद के पास रखते हैं। तो राजसूय यज्ञ जब हुआ था धर्मराज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? साधुओं का, ऋषियों मुनियों का स्वागत करना, उनके चरण धोना और चरण पोछना, सबसे इंपॉर्टेंट काम भगवान ने अपने हाथ में लिया। और स्वयं सभी साधुओं का ऋषियों का को है चरण धोए, और अपने पीताम्बर जो श्रेष्ठतम वस्त्र है उनका, उससे उनके चरण पोछे उन्होंने। इसी तरह से भगवान ने सोचा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मेरे खोए हुए बालकों को वापस लाना है, तो मैं किसी अधिकारी को नहीं भेजूंगा, खुद जाऊंगा और खुद जो साधन है उनको वापस लाने का, वो भी खुद जाकर उनको बांटूंगा अपने हाथ से। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना नाम स्वयं अपने मुख से अपने हाथ से सभी जनता को बांटा हरिनाम संकीर्तन के रूप में। तो ये उनकी कृपा को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके आगे और आलस्य मत करना, अरे अभी भी नहीं करेंगे, देखो आगे क्या होता है, आगे कुछ और करेंगे वो, तब जाएंगे। हाँ, ऐसा रुकना नहीं। कलयुग बहुत घनघोर हो रहा है, बहुत भयंकर हो रहा है, कलयुग के अंदर संकट बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमको भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करके उसको स्वीकार करना है, और इसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगन्नाथ भगवान की जय।